नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वशे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तस्य आत्मतन्त्रस्य हरेः अधीशितो परस्य मायाधिपते महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितो परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावा हरे कृष्ण। ಆತ್ಮತಂತಾಶ ಹರೇರ ದೇಶತೋ ಮಾಯಾಧಿಪತೇರ್ಮಹಾತ್ಮೂತಾಯ ಹೇ ಮನ ತದರೋಪಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮತಂತಾಶ ಹರೇರ ದೇಶತೋ ಮಾಯಾಧಿಪತೇರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ಚರಂತಿ ತದರೂಪಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮತಂತಾಶ ಹರೇರ ದೇಶತೋ ಮಹಾತ್ಮನೋಹರೇ ವೈ ಮನೋಹರ ಲೋಪಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತಾಜಿ ತಸ್ಯಾತ್ಮಕಂತ ಸಹರೇ ಲಭಿಸಿತು ಮಹಾತ್ಮನ ದೂತಾಯ ವೈ ಮನೋಹರ ಸ್ವಭಾವ ಸಹರೇರೇಶತು ತಸ್ಯ ಉಷ್ಕಾ ಆತ್ಮತಂತ್ರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಕಿಸಿ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಆಶ್ರಿತ ನಹಿ ಹರೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾ ಅಧೀಶಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು ಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾ ಮಾಯಾ ಅಧಿಪತೆ ಮಾಯಾ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪ್ರಾಯ ದೂತ ದೂತ್ ಇಹ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ವೈ ನಿಸಂದೇಹ ಮನೋಹರ ಬರ್ತಾವ್ ತಥಾ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಸುಹಾವನಾ ಚರಂತಿ ಚಲತೆ ಫಿರ್ತೆ ಹೈ ತತ್ ಉನ್ಕಾ ರೂಪ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ವಾಲ ಗುಣ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ತಥಾ ಸ್ವಭಾವ ಅನುವಾದ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಅನುವಾದ ಭಗವಾನ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ತಥಾ ಪೂರಿ ತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೈ ವೆ ಮಾಯಾ ಸಮೇತ ಹರ ಏಕ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈ ವೆ ರೂಪ ಗುಣ ತಥಾ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿ ತರ ಉನ್ಕೆ ಆದೇಶ ಪಾಲಕ ಯಾನಿ ವೈಷ್ಣವ ಜೊ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಹೀ ಜೈಸಾ ಹಿ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ತಥಾ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ ವೆ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋಕರ್ ಸದೈವ ವಿಚರಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಮರಾಜ್ ಪರಮ ನಿಯಂತಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಕಿಂತು ಯಮರಾಜ್ ಕೆ ದೂತ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಸುಕ್ ಥೆ जिन्होंने अजामिल के साथ मुठभेट में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज ने कहा कि विष्णुदूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृश हैं। दूसरे शब्दों में विष्णुदूत या वैष्णव प्रायः भगवान जितने ही योग्य होते हैं। यमराज ने दूतों को सूचित किया कि विष्णुदूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि विष्णु यमराज से ऊपर है, इसलिए विष्णु दूत जमदूतों के ऊपर हैं। अतः विष्णु दूतों द्वारा रक्षित व्यक्तियों को जमदूत छू तक नहीं सकते। शील प्रभुपाद की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत संदेश सुनने के लिए आप उपस्थित हैं। यह वास्तव में जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ी सफलता दक्षता है कि वह भगवान के विषय में सुनना चाहता है, बोलना चाहता है और स्मरण करना चाहता है, स्मरण करता है। तो आइए हम लोग इस श्लोक पर विचार करेंगे। यह श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के तीसरे अध्याय का 17 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान यमराज अपने दूतों को भगवत तत्व का बोध करा रहे हैं। आप पहले सुन चुके होंगे, इस अध्याय में प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है। महाराज परीक्षित प्रश्न किए हैं, विष्णु पार्षदों द्वारा जमपास काट देने के बाद जमदूत अपने स्वामी से क्या कहे, और इसके उत्तर में यमराज ने क्या कहा, ये जिज्ञासा है। आप प्रसंग जानते हैं, यह अजामिल की प्रसिद्ध कथा हरिनाम की महिमा। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति को जमदूत नरक नहीं ले जा सके, क्योंकि वो अपने जीवन के अंत में भगवान का नाम उच्चारण कर दिया। तो इस अवसर पर भगवत पार्षद आकर जमपास को काट दिए और अजामिल को मुक्त कर दिए। तो इसके बाद बीच की कथा को सुखदेव गोस्वामी वहां कहते हैं कि इस प्रकार के घटना से अजामिल पर क्या हुआ, उस पर क्या असर हुआ। तो उस कथा को कहने में दूसरा अध्याय पूरा कर दिए। जमदूत तो चले गए, लेकिन अजामिल अपने को संभल कर भगवत पार्षदों को प्रणाम करना चाहा। ज्यों ही प्रणाम करने के लिए झुकाते हो, भगवत पार्षद भी चले गए। तो फिर वह अपने पर बहुत ग्लानी किया कि हाय हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिताया, मैं इतना नीच व्यक्ति, अपने माता पिता का तिरस्कार किया जबकि अपने माता पिता का इकलौता संतान था, और मैं अपने साध्वी पत्नी का त्याग करके एक असती शराब पीने वाली वेश्या का संग किया, और मैं पुत्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लिया। अपने जीवन पर बहुत धिक्कारते हुए अंत में निर्णय लिया कि किसी न किसी रूप में हमारा पुण्य था जिसके कारण भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ। काफी देर तक भ्रम में था कि मैं स्वप्न देख रहा था कि सही चीज है। सब मिलाकर निर्णय लिया कि अब मुझे शुद्ध हरिनाम जप करना चाहिए। तो इस सब प्रसंग को कहने में सुखदेव गोस्वामी दूसरा अध्याय पूरा कर दिए। फिर वह निर्णय लेकर हरिद्वार गया और बड़ी तत्परता से पवित्र नाम जप करके भगवत धाम प्राप्त किया। तब तक महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं तीसरे अध्याय, इसी अध्याय के शुरू में, कि अच्छा वो जमदूत क्या किए, यह तो अचानक अद्भुत घटना है, ऐसा कभी न देखा गया न सुना गया कि जमराज के पास बंधन को कोई काट दे या रोक दे। ये तो फाइनल निर्णय माना जाता है जमराज का। तो जमदूतों के पराजित होने के बाद वे अपने स्वामी को किस रूप में रिपोर्ट किए और फिर भगवान जमराज उसका उत्तर क्या दिए, तो अब इसी प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी यहां आगे बढ़ा रहे हैं। जमदूत जब यमराज के पास पहुंचे तो जो फॉर्मालिटी होनी चाहिए, स्वामी को प्रणाम करना है, कुछ निवेदन करना, हाथ जोड़कर, वैसा नहीं किए। एकदम जाते ही पूछने लगे, इस जगत में कितने शासक हैं? यदि अनेक शासक हैं तो किसी जीव के कर्मों का निर्णय कैसे होगा? यमराज तो हक्का बक्का ये बोल क्या रहे हैं। और फिर कहते हैं कि आज चार सिद्ध। यमराज पूछते हो क्या गया है, बतलाओ स्थिति तो बतलाओ। तो कहते हैं बतलाने की बात कर रहे हैं, वो चार सिद्ध आए और आपके आज्ञा से हम लोग अजामिल को लेने गए थे, वो पापी अजामिल, वो आपके जमपास को भी काट दिए और इतना भयंकर क्रोध में थे कि किसी तरह जान बच गई, भाग कर आ गए हम लोग। आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जमदूत के बातों से ऐसा ध्वनित होता है कि वे कह रहे हैं कि यदि आप उन चार सिद्धों को बुलाकर दंडित नहीं करेंगे तो आप जैसे जुगनू की नौकरी आज से नहीं करेंगे। हम एकदम क्रोध में थे, क्या हो गया? तो कहे जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों से भयभीत होकर वह अपने बेटे का नाम पुकारा, नारायण। बस इतना सुनते ही चार सिद्ध आ गए और बिल्कुल आप बंधन को काट दिए और हम लोगों को भगा दिए। इतना सुनते ही जमराज के तो एकदम होश उड़ गई, बहुत बड़ा भगवत अपराध हो गया। तो वो प्रश्न कर रहे हैं उन चार सिद्धों के विषय में जिसके द्वारा वो पराजित हुए हैं, लेकिन जमराज उत्तर देने लगे दूसरे ढंग के, भगवान परम पुरुष के गुणों का वर्णन करने लगे। पांच श्लोक में भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं जमराज। यहां वर्णन करते हुए 12 से 16 तक, 12, 13, 14, 15, 16, पांच श्लोकों में भगवान के महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन जमदूत आपस में हक्का बक्का, ये क्या कह रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं? आपस में चर्चा करते हैं, बीच बीच में एक दूसरे के मुंह देकर इशारा करते हैं, हम लोग पूछ क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं? अरे उन चार दूतों के विषय में तो बताइए, वो चार सिद्ध कौन थे और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तब उनकी स्थिति को देखकर यमराज इस श्लोक में भगवान की महिमा के साथ उन दूतों का परिचय देते हैं, वो कौन है। तो कहते हैं तस्यात्म तंत्रस्य, तस्य कहने के पहले उनका, माने जिनका मैं वर्णन पांच श्लोकों में किया, वे भगवान आत्मतंत्रस्य हरेर अधिशितु परस्य मायाधिपतिर महात्मनः। आधा श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन अभी कर रहे हैं कि वह आत्मतंत्र है। तस्य उनका, जिनका मैं वर्णन किया, वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, स्वयं अपने आप पर आश्रित हैं, उनको दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करता, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, जैसी मर्जी वैसा चलते हैं। और परस्य, परस्य मतलब जो और भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव आदि, उनके भी स्वामी हैं। परस्य अधिशितु, जितने बड़े बड़े अधिकारी जानते हो उसी बीच में कहे हमारी बात कह रहे हो कि और कितने शासक हैं। मैं, ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, पहले के श्लोकों में कह चुके हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि जितने शासक हैं सब उनके नौकर हैं, उस परम पुरुष के हम लोग सेवक हैं और उनकी इशारा पर हम लोग इस जगत की व्यवस्था देखते हैं। और यही नहीं, इस जगत को पूर्ण रूप से सृष्टि, पालन, संहार करने की जो क्षमता रखती है माया, बहिरंगा प्रकृति, उसके भी अधिपति हैं मायाधिपति। कहते हैं परस्य मायाधिपते, माया के अधिपति हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। लेकिन इच्छा अनुरूप जस्य च चेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। जो इस जगत को सृष्ट करती है, पालन करती है और संहार करती है, संपूर्ण जगत व्यवस्था को जो चलाती है, जय श्री साधारण, वह बहिरंगा प्रकृति माया शक्ति जिनकी दासी है, वो मायाधीश है। और महात्मनः, महात्मनः का मतलब हर विषय में बढ़कर रूप गुण शील स्वभाव जिनके समान किसी का नहीं हो, प्राकृत गुण से रहित और प्राकृत गुणों से युक्त है। उनका रूप अप्राकृत है, दिव्य है, सुंदर है और वे बहुत सुंदर गुणों से युक्त है। उनके पास शील भी है, स्वभाव भी है, महात्मनः सब विषय में बढ़कर है। तो इतना कहने के बाद नीचे के दो पंक्तियों में प्रायेण दूता यह वही मनोहरा, प्रायः अधिकांशतः उनके दूत, उनके परिकर उन्हीं गुणों से युक्त होते हैं। जो गुण भगवान की है वही गुण दूतों का भी है जिनको तुम लोग देखे हो, वे भगवत पार्षद उन्हीं के गुणों से युक्त होते हैं। जैसा भगवान में गुण होता है, सौंदर्य होता है, शील होता है, स्वभाव होता है, वैसा भगवान के परिकरों में होता है। इसलिए कहते हैं यह वही यह इस जगत में कभी कभी दिखते हैं, वही निश्चित रूप से मनोहरा बहुत सुंदर निसंदेह वे यहाँ दिखते हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं, मन को हरण करने वाला उनका रूप है। और कहते हैं चरंती वे भगवत पार्षद घूमते हैं प्रायः, और तदरूप गुण स्वभावा, भगवान के रूप गुण और स्वभाव को धारण करके इस जगत में घूमते रहते हैं। यद्यपि यमदूत लोग जिज्ञासा नहीं किए कि भगवत पार्षद तो भगवत धाम में रहना चाहिए, उनको यहाँ क्यों घूमते हैं, लेकिन इस तरह की बात भागवत में अनेक श्लोकों में अनेक प्रसंगों में कहा गया है। ऐसा नहीं कि यमराज कहते हैं चरंती घूमते रहते हैं, भगवत परिकरों को, भगवत पार्षदों को परिव्राजक कहा जाता है। एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, परिव्रजन करते हैं। ब्रज माने चलना, परिव्रजन माने निरंतर चलते हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां चलते रहते हैं। तो घूमते रहते हैं, तो यहाँ भगवान यमराज कहते हैं कि अपने गुण शील रूप सौंदर्य को लेकर घूमते हैं, जो उनके पास है उसको देते हैं, तो इसे जगत का हित होता है, घूमते हैं। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में विदुर जी इनसे उद्धव जी से जिज्ञासा करते हैं, अनेकों प्रकार के जिज्ञासा किए शुरू में ही पहले अध्याय में, और उद्धव जी विदुर जी के जिज्ञासा के अनुरूप उत्तर दे दिए, भगवान के गुणों का वर्णन किए। शुरू से भगवान के जन्म से लेकर भगवत धाम जाने तक की कथा को संक्षेप में पूरा किए, और उसी क्रम में उद्धव जी ने कह दिया कि चलते चलते भगवान प्रभास क्षेत्र में अपने विषय में ज्ञान दिए, भागवत ज्ञान दिए हमको, और हमारे साथ मैत्रेय जी भी उपस्थित थे। तो विदुर जी के मन में लोभ हुआ कि वह ज्ञान हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तब विदुर जी कहते हैं ज्ञानम परम स्वात्मम रहः प्रकाशम जदाह जोगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भगवान नोरहति यद विध यद्धि विष्णु भृत्यास्व भृत्यार्थ कृतः चरंती। कहते हैं जो ज्ञान श्री भगवान ने अपने विषय में दिया, अपने स्वात्मरह प्रकाशम, अपने रहस्य का प्रकाश, अपने स्थिति का प्रकाशन जो आपके सामने किया, जो भगवान जोगेश्वर सर्व जगत के ईश्वर श्री भगवान जो आपके विषय में दिए, भक्त तुम कृपा करके वही कहिए, हमको कहिए। भगवान न रहती यद्य विष्णु, जो भगवान की विष्णु की जो स्थिति है उसको आप कहिए, वर्णन कीजिए, हमको बताइए। तो मानो उद्धव कहे कि मैं क्यों बताऊं आपको, तो कहते हैं कि भृत्या सो भृत्यार्थ कृतः चरंती। आप भगवत पार्षदों का यही काम है कि भगवान के प्रिय भक्त जो हैं, भृत्य जो हैं, भृत्यार्थ अपने सेवकों के प्रति, अपने प्रति विनम्र व्यक्ति को यह बताते हैं, इसीलिए तो घूमते हैं। कृतः चरंती कहते हैं भृत्यार्थ कृतः चरंती, घूमते हैं भगवत ज्ञान देने के लिए ही भगवत पार्षद घूमते हैं, यह सिद्धांत है। आप भगवान के परिकर हैं, उनके निकट रहने वाले हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो आपका ड्यूटी यही है, इसलिए आप दीजिए। लेकिन एक में एक विशेष बात कहते हैं, घूमते जरूर हैं लेकिन जहां तहां वो नहीं कह देते हैं, ज्ञान लेकर घूमते हैं, अपने रूप सौंदर्य शील स्वभाव भगवान के सारा गुण धारण करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी में दवा बेचने वाले चिल्लाते रहते हैं, वैसे नहीं ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि स्वभृत कृतार्थ चरंती, जो विनम्र भाव से सुनने की जिज्ञासा करता है, सुनना चाहता है, उसको बताते हैं। भृत्या भगवान के भक्तगण स्वभृत्यार्थ कृतः चरंती, अपने प्रति विनम्र व्यक्ति को बतलाने के लिए घूमते हैं। एक विशेष बात कह रहे हैं विदुर जी कि भगवत गुण धारण करके घूमते हैं सारे जगत के हित करने के लिए, लेकिन जहां तहां भाषण नहीं करते, जो विनम्र भाव से सुनने की इच्छा करता है उसके प्रति विनम्र होता है तब ज्ञान देते हैं। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तो जो सुनने के लिए ललायित है, विनम्र है, हाथ जोड़कर जिज्ञासा करता है, उसको तो जरूर बताते हैं। मैं ऐसे ही जिज्ञासुओं में से एक हूं, आप मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूं। यह है भगवत ज्ञान धारण करने की योग्यता, यह योग्यता है कि व्यक्ति को विनम्र होकर सुनना चाहिए। तो इस प्रकार मैं चरंती पर कह दिया कि ऐसे घूमते हैं लेकिन किसी बिजनेस के लिए, भोग के लिए नहीं, भगवत ज्ञान देने के लिए, और वो समर्पित विनम्र भक्तों को ज्ञान देने के लिए घूमते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक प्रसंग वहां है एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में, जब नव जोगेश्वर महाराज निमि के यहां पहुंचे हैं। महाराज निमि, महाराज विदेह राज के सभा में जब भगवान ऋषभ देव के नौ पुत्र, जिनको नव जोगेश्वर कहते हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये नौ का सेट एक साथ चलता है। जैसे ब्रह्मा के चार पुत्र चतुष कुमार एक साथ चलते हैं, अश्विनी कुमार दो एक साथ चलते हैं, प्रचेता लोग दस एक साथ चलते हैं, वैसे नौ जोगेश्वर एक साथ चलते हैं। तो जब ये नौ पहुंचे निमि महाराज के यहां, तो उनका स्वागत करते हुए निमि महाराज कहते हैं, मन्ने भगवतः साक्षात, मैं आप लोगों को भगवान का पार्षदान वो मधु दिश, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधु दिश, मैं आप लोगों को भगवान मधुसूदन का साक्षात पार्षद मानता हूं। तो कहा जा सकता है इस तरह की गलती क्यों कर रहे हैं, भगवत पार्षद क्यों मान रहे हैं, भगवत पार्षद तो भगवान के साथ धाम में रहते हैं, यहां कैसे पार्षद आ गए। तो कहते हैं विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरंती ही। हां, वो भगवत पार्षद भगवान के सेवा में जरूर रहते हैं लेकिन भगवान के ही अंशभूत जीवों का, इस प्राकृत जगत के जीवों का हित करने के लिए, पवित्र करने के लिए चरंती घूमते हैं। देखिए इसमें भी कह रहे हैं चरण थी, चलते रहते हैं, घूमते हैं। भगवत परिकर भी प्राकृत जगत में आते हैं लोगों के हित करने के लिए, पवित्र करने के लिए। विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरन्ति ही, घूमते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के साथ ही रहते हैं, इस प्राकृत जगत में भी आते हैं और उनके घूमने का आने का उद्देश्य है लोगों को पवित्र करना, भगवान के विषय में ज्ञान देना। चलते हैं, घूमते हैं। और देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पहुंचते हैं, उसी अध्याय में वर्णन है, एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय। वसुदेव जी के घर में देवर्षि नारद जब पहुंचे तो उनका स्वागत करते हुए वसुदेव जी कहते हैं, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थय सर्वदेहिनाम। हे भगवान, आप जैसे महान भगवत पार्षदों की यात्रा जो है लोगों के कल्याण के लिए है, हमारे हित के लिए घूमते हैं। साधु महात्मा भी घूमते रहते हैं लेकिन उनका उद्देश्य होता है लोगों का हित करना। तो आप हमारे स्वस्थी के लिए, कल्याण के लिए घूम रहे हैं। स्वस्थय सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों के मंगल के लिए आप घूमते हैं। इस प्रकार अनेकों जगह पर भगवत पार्षदों के विषय में ऐसी बातें कही गई हैं, घूमते हैं, चरंती ब्रजंती या यात्रा विचलनम, घूमना। गर्गाचार्य जी जब नंद भवन में पहुंचे गोकुल, तो नंद बाबा उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिनचेत शाम निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। महत पुरुषों का घूमना, महत विचलनम चलना, यहां से वहां, एक गांव से दूसरे गांव ऐसे जाना, गृहणाम दिन चेत शाम, खास करके घर गृहस्थी में आसक्त लोगों के यहां अगर कोई महात्मा पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उसका कल्याण करना चाहता है। निशेषाय, निशेष के लिए, हित के लिए चलता है। हे भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, इसके अतिरिक्त तो उसका कोई कारण नहीं होता है घूमने का, न अन्यथा कल्पते, कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे कारण से घूमता है, केवल कल्याण के लिए घूमता है। भगवत पार्षद घूमते हैं, भगवत भक्त घूमते हैं और खासकर गृहस्थों के यहां आते हैं उसके कल्याण के लिए। एक बार कहीं हाउस प्रोग्राम में मैं इस श्लोक को कह रहा था तो कथा के बाद यही इसी श्लोक पर बोला पूरा, तो लास्ट में एक व्यक्ति जिज्ञासा किया, लेकिन आजकल के महात्मा तो रसीद बुक लेकर घूमते हैं, ऐसा पूछ दिया। यहां कल्पते नान्यथा क्वचित, अपने कोई मतलब नहीं होता, हित करने के लिए घूमते हैं। तो मैं पूछा कि कौन इस्कॉन के भक्त लोग, तो कहे हाँ। तो मैं कहा क्या समझ रहे हैं, रसीद बुक लेकर घूमना उनका अपना स्वार्थ होता है? एक महात्मा को एक व्यक्ति कुछ पैसा दिया, ज्यादा पैसा दे दिया, 10-20 हजार देकर प्रणाम किया, कुछ नहीं बोले। तो कहा बाबा कुछ आशीर्वाद तो दीजिए, मैं आपकी सेवा किया है, पैसा दिया। तो कहे अच्छा, उल्टे तुम हमको पैसा देकर अपना नौकर बना लिया, इसको कहां खर्च करूं, क्या करूं, और आशीर्वाद मुझसे मांग रहा है। आशीर्वाद तो तुमको देना चाहिए कि मैं पैसा को कहां खर्च करूंगा, इस विषय में मुझको सोचना पड़ेगा। और इसी तरह की एक घटना है, आप जानते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी का, वृद्धावस्था में उनका सेवक उनको टोकरी में लेकर चलता था जहां जाने की इच्छा होती। तो एक बार नवद्वीप में वो गंगा जी के तट पर जा रहे थे आचमन करने, स्नान करने की इच्छा से, तो लेकर वो गांव से घूमते हुए टोकरी में जा रहा था। और तब तक एक सेठ 5 रुपए सोने का सिक्का फेंक दिया बाबा जी के टोकरी में। तो देखे सिक्का है, पैसा है, तो कहे रुको रुको, क्या हो गया? तो देखो ये पैसा कौन फेंका, खोजो, पीछे पीछे चलो, देखो कौन इस टोकरी में फेंक दिया। तो खोजते खोजते गया तो दरवाजे पर वो सेठ बैठा था। सबसे पूछते जाता था, आप दिए आप दिए आप दिए, तो कहा हाँ मैं दिया। तो कहा नीचे उतारो। उतरने के बाद कहे क्यों दिया? तो बाबा आप सिद्ध महात्मा है, मेरे कमाई को कहीं उचित जगह पर खर्च कर देंगे। तो कहे तुम्हारे बाप का नौकर हूं, तुम्हारा पैसा मैं खर्च करता रहूंगा। मूर्ख कहीं का अपने भजन से फुर्सत नहीं है और तुम्हारे पैसा को मैं कहां खर्च करूं क्या करूं। जब से पैसा आया तब से दिमाग खराब, ले अपना पैसा फेंक दिए। फेंक दिए तो एकदम कांपने लगा कि सिद्ध बाबा है नाराज हो जाएंगे तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, रोने लगा। कहे कि ठीक है इसको किसी गाय की सेवा में गौशाला में दे देना, मैं तुमको सलाह दे दिया यही काफी है, उचित जगह पर खर्च कर देना। फिर चले गए। तो क्या आप समझते हैं कि रसीद बुक लेकर आ गए तो अपना काम है? थोड़ा भी संकोच होना चाहिए कि जो लक्ष्मीपति बनते हैं बड़े बड़े धनी लोग, लक्ष्मी पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको जानना चाहिए कि लक्ष्मी समुद्र से निकलने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मा शिव को भी रिजेक्ट करके भगवान को स्वीकार की, केवल वह विष्णु की पत्नी है। जो उनको पत्नी बनाने का कोशिश करता है उस पर सवारी करती है, उल्लू बना देती है। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसको दिन में दिखता ही नहीं। तो जिसके पास ज्यादा धन होता है और सोचता है कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसको जैसे मर्जी खर्च करेंगे, उनको उल्लू बना देती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मंदिर की सेवा में देना चाहिए कि क्लब में देना चाहिए, एकदम अंधा हो जाता है। तो ऐसे उल्लुओं पर विशेष कृपा करके महात्मा लोग रसीद लेकर आते हैं कि अपनी कमाई को कुछ राधा रास बिहारी की सेवा में भी दो। देना नहीं चाहता लेकिन उसको समझा बुझा कर स्नेह पूर्वक कुछ लेते हैं, दो बार चार बार पांच बार देता है, चलो जन्माष्टमी के अभिषेक के लिए कुछ दिया। और इतनी कर्म जड़ता में है कि वो आता भी नहीं कि पैसा ये लोग कर क्या रहे हैं, कैसे अभिषेक होता है, दर्शन करने नहीं आता। भक्त लोग कृपा करके प्रसाद भी उसके घर पहुंचाते हैं। दो चार पांच बार के बाद बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि भगवान की सेवा में संपत्ति लगी तो शुद्ध होना ही है। तब धीरे धीरे वो देखने जिज्ञासा होती है, चलो देखूं यार क्या कर रहे हैं जूहू में भक्त लोग हरे कृष्ण वाले। तो देखने आता है तो भक्त लोग ऐसा स्वागत करते हैं उस कर्म जड़ को कि जीवन में उसको ऐसा स्वागत हुआ ही नहीं है। और इस तरह भगवान का दर्शन सेवा सब देखकर चकित हो जाता है। धन देने से ही शुद्धि प्रारंभ हो गई है, लेकिन भगवान का दर्शन, अधिक संख्या में भक्तों का दर्शन और प्रसाद भगवान का खाने का अवसर मिलता है, धीरे धीरे शुद्धि प्रारंभ। और तब समझता है यही असली काम है, इसी में देना चाहिए। और फिर पढ़ना चालू करता है, जपना चालू करता है। तो इस तरह से कृपा पूर्वक भक्त लोग रसीद बुक लेकर आते हैं। इसको आप क्या समझते हैं, साधारण चीज या ज्ञान? बस इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। और रसीद बुक लेकर आते हैं फिर भी निशेषाय केवल कल्याण है, निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, कोई अन्य कारण नहीं है। अपना जीवन समर्पित करके, घर छोड़कर, स्त्री छोड़कर, परिवार छोड़कर, विवाह नहीं करने का निर्णय लेकर साधु सन्यासी रूप में रहते हैं और आपका नौकर बने हुए हैं, धन ले जाकर भगवान की सेवा में लगाते हैं, यह उनकी विशेष करुणा है और कुछ नहीं। इसके लिए घूमते हैं। कभी कभी आपके उपदेश तो काम करेगा नहीं, तो कमाई लगाते हैं, जब सुनने के लिए योग्यता हो जाती है तो कथा सुनाते हैं, तब सुनाते हैं। और सुनाने के बाद भगवान के विषय में बोध होता है। और भगवत कथा में इतनी क्षमता है कि एक साथ तीन काम करती है। नवजोगेंद्र लोग कहते हैं जैसे भूखा व्यक्ति, खूब भूख लगी है तो उस समय क्या होता है कि पेट में क्षुधा का बोध होता है, भूख तेज लगी है। और भूख लगने से शरीर में कमजोरियां फीलिंग होने लगती है, कमजोरी हो जाता है। और जब उस अवस्था में खाते हैं भूखे अवस्था में, तो तीन काम होती है। भोजन करते समय भोजन में टेस्ट मिलता है, और एक एक ग्रास पर शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है और भूख की जो दिक्कत है वो क्षुधा की निवृत्ति होने लगती है। भूख दूर होती है, शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है और भोजन में टेस्ट मिलता है। उसी प्रकार भगवान के विषय में अगर कोई सुनता है तो तीन काम, श्रवणम भक्ति, भक्ति होती है सुन रहे हैं, और सुनने से ज्ञान होता है, प्रबोध होता है। भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। तो ज्ञान होता है कि अरे ये हमारा पोजीशन है, मैं कहाँ फंसा हूँ यार, मुझको भगवान का शरण लेना चाहिए, मैं बेकार में कैसे कैसे स्थिति में मर रहा हूँ। तो जब ज्ञान होता है तब जिन विषयों में वो लिप्त है उसे वैराग्य हो जाता है अपने आप। वैराग्य का स्वांग करने से वैराग्य नहीं होता है, भगवत कथा सुनने से वैराग्य और ज्ञान दोनों हो जाता है। तो केवल भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तथा कथित जो ज्ञान है वो जो भगवत ज्ञान नहीं है वो भक्ति के पुत्र नहीं है, वो तो अहंकार बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन भक्ति के आश्रय में रहकर जो ज्ञान लिया जाता है, श्रवण किया जाता है, उसे भगवान के विषय में बोध होता है, अपनी स्थिति का बोध होता है, संसार के विषय में ज्ञान होता है, तब समझ में आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि नहीं यही करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान यमराज बतला रहे हैं कि प्रायण दूता इह वही मनोहरा, भगवान के भक्त प्राय दिखते हैं, चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा, भगवान के तत् रूप का मतलब उसी रूप को, उसी गुण को, उसी शील स्वभाव को धारण करते हैं। दुनिया खाने के फेर में मर रही है, जितना मार्केट का चीज है अपने किचन में रख दें, और जितना दुनिया में एक एक चीज है उसको सब अपने घर लाते हैं भोगने के फेर में, आप भक्त लोग खिलाने में सुख का अनुभव करते हैं, बड़ा बड़ा उत्सव करके लोगों को खिलाते हैं, फूड फॉर लाइफ चलाते हैं। तो जो खाने का सुख है वो जीव का है, भोगने का सुख, आज जो दूसरों को खिलाकर दूसरों को सुखी देखकर सुख है वो भगवान का गुण है। भगवान दूसरों को देखकर सुखी देखकर खुश होते हैं, वैसे भक्त लोग, भक्तों का स्वभाव होता है दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, अपने सुख दुख का परवाह ही नहीं करते। यह वास्तविक गुण भगवान का है, वो भक्तों में आ जाता है। रामचरितमानस में एक जगह साधु की महिमा बतलाते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पै कहीं न जाना। कुछ लोग साधुओं के सॉफ्ट हृदय, कोमल हृदय की उपमा मक्खन से देते हैं, नवनीत से। नवनीत फ्रिज में रखा हुआ कठोर नहीं, मथा हुआ तुरंत दही का निकला हुआ जो मुलायम है उसको नवनीत कहते हैं। वो बटर, वो एकदम छूते ही उसमें कोई रुखरापन नहीं, एकदम मुलायम, दही के मथने के बाद जो तुरंत निकला है वो है कोमल। तो ऐसा कोमल साधु का स्वभाव है। लेकिन कहते हैं ना ना, ये उपमा उचित नहीं है, साधु का हृदय नवनीत जैसा नहीं है। कहा कभी पर कहीं न जाना, कभी कहा लेकिन कहने नहीं आया, क्या कमी रह गई। तो कहते हैं निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। नवनीत को आग का हीट कीजिए, आंच दिखाइए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पिघलने लगता है। अपने ऊपर जब ताप आता है तो नवनीत पिघलता है, लेकिन निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। लेकिन साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान नृसिंहदेव से कि हे नृसिंहदेव, मुझको बैतरणी से, नरक से या संसारिक दुखों से कोई टेंशन नहीं है। नयो द्विजे पर दुरत्य वही तरण्या, तद बीर्ज गायन महामृत मग्न चित्त। मुझको इस संसार के दुख से, बैतरणी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? तद्वीर्य गायन महामत चित्त, मैं आपकी महिमा, आपकी लीला, आपका नाम लेकर इतना मस्त हूं कि संसार दुख क्या करेगा मुझको। तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरा चित्त आपकी महिमा गाने में मग्न है, इसलिए संसार का दुख का मुझे भान ही नहीं है। अच्छा, इतना निश्चिंत है। लेकिन दूसरे पंक्ति में ही कहते हैं, लेकिन हे नाथ, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय भर मुद बहतो विमूढ़। लेकिन हे नृसिंहदेव, मुझे उन मूर्खों के लिए चिंता है, उन मूढ़ों के लिए जो माया के सुख के लिए गधे की तरह भार ढोते हैं। क्या कहूं, आपसे विमुख होकर वो संसार को भोगना चाहते हैं, ऐसे आपसे विमुख कृष्ण विमुख लोगों के लिए मुझे चिंता है। देखिए, अपने लिए उनको चिंता नहीं है, लेकिन संसारिक लोगों के लिए चिंता है, क्योंकि आपसे विमुख होकर भर मुद बहतो विमूढ़ान। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मूढ़ा माने गधा, सीधा। गधे ईंट ढोते हैं, सीमेंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, घर बना देते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए आज तक कोई घर नहीं मिला। धोबी लोग उन पर कपड़ा धोते हैं, लेकिन आज तक जंघिया नहीं मिला। और बासमती राइस भी ढोते हैं, लेकिन आज तक एक दिन भी भात नहीं मिला। तो ये कितना परिश्रम के मूर्ख लोग करते हैं बिना मतलब के। जितना से काम चल सके उतना करना चाहिए, और उससे समय निकाल कर आपका भजन करना चाहिए, लेकिन मूर्ख लोग नहीं कर रहे हैं। नृसिंहदेव, मुझको बहुत चिंता है, अपने लिए नहीं चिंता है, उन लोगों के लिए। तो मानो नृसिंहदेव कहे कि प्रहलाद, तुम टेंशन मत लो, बहुत साधु महात्मा है जो उन लोगों को देखेंगे। कहे नहीं नहीं, प्रायण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। बहुत ऐसे साधु महात्मा है जो अपने स्वार्थ में होकर चले जाते हैं गुफा में, मौनम चरंती, बोलते ही नहीं, प्रवचन ही नहीं करेंगे तो क्या हित करेंगे। मौनम चरंती बीजने, जहां कोई आदमी नहीं, हिमालय की गुफा में, न परार्थ निष्ठा, दूसरों की निष्ठा ही नहीं। तरह तरह के लोग हैं, साधक लोग भी विचित्र हैं। कुछ लोग केवल अपने भजन की चिंता करते हैं, और कुछ लोग दूसरे के उपदेश करने में बड़ा दक्ष होते हैं, अपने करें या न करें पर उपदेश कुशल बहुत है रे। सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि आचार करे न केह ना करे प्रचार। कुछ लोग आचरण जरूर करते हैं, लेकिन दूसरों को प्रीचिंग नहीं करते। एक ग्रुप है प्रचार करे न केह ना करे आचार। कुछ लोग प्रीचिंग करने में तो दक्ष होते हैं, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। आचार प्रचार यही दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगतेरा आर्ज। आचरण और प्रचार दोनों आप कर रहे हैं, आप इस जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं, जगत गुरु हैं। आप जिस कार्य के लिए महाप्रभु आए वो काम आप कर रहे हैं हरिदास जी, सनातन गोस्वामी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे कहने का मतलब कि साधु लोग दूसरे के हित के लिए चिंतित रहते हैं। आप सुने होंगे कि एक महात्मा नदी में स्नान कर रहा था, आप जरूर सुने होंगे कहीं, तो देखा पानी के धारा में एक बिच्छू बह रहा है। अरे ये तो जलचर है नहीं, बेचारा मर जाएगा। तो उसको हाथ में पकड़कर स्थल पर फेंकना चाहा, ज्यों ही पकड़ा त्यों डंक मार दिया, तो एकदम हाथ झंझना गया, नीचे गिर गया। दूसरे हाथ से पकड़ा, इसमें मार दिया। तो एक व्यक्ति तट पर खड़ा खड़ा देख रहा था, कहा महात्मा जी इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं, ये डंक मारने वाला जीव है, थोड़े आप से शीलता करेगा, ठीक नहीं है। तो दोनों हाथ से पकड़ करके आप फेंक दिए। कहे जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ दूं। इसका स्वभाव है डंक मारना और हमारा स्वभाव है दूसरे की सहायता करना, तो हम इसके दुख से दुखी हैं, ये मेरा स्वभाव है, इसलिए हित किए। तो इस प्रकार घूमते रहते हैं। प्रायण दूता इहवई मनोहरा, लगते भी बड़ा सुंदर है। फर्स्ट क्लास तिलक लगाकर, सेविंग करके, अच्छा स्वस्थ साफ वस्त्र पहनकर डायरेक्ट पार्षद लगते हैं। संसार के लोग पता नहीं क्या पहनते हैं, कैसा वेशभूषा धारण करते हैं, राक्षस जैसा। तो ये मनोहर लगते हैं देखने में भी, रूप में भी सुंदर लगते हैं, गुण में भी सुंदर है, स्वभाव भी परोपकारी है। साधु का दो स्वभाव, बाह्य स्वभाव जो दिखता है वो है सहनशीलता और परोपकारिता। सहने की उनमें क्षमता होती है। उत्तर भारत में अगर कोई साधु कुछ क्रोध व्यक्त कर ले तो तुरंत लोग कह देंगे, बूंद आघात सहें गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। जैसे पत्थर पहाड़ बारिश के बूंदों को सहता है, वैसे साधुओं को सहने की क्षमता होनी चाहिए। पहाड़ से उपमा दिया गया है भागवत में भी, दूसरे जगह भी। तो गिरयो वर्ष धारा भी हन्य माना न बिव्यथु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा की धारा को बिना डिस्टर्ब हुए जैसे पर्वत सहता है। कैसे सहता है? तो जैसे अधोक्षज में जिनका चित लगा है कृष्ण में, वैसे भक्त लोग दुनिया के लोगों को सह लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं। तो सहनशीलता, और दूसरा है परोपकारिता, दूसरे की सहायता करना। एक गुण दिखता है साधुओं में, और अंतरंग है मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वंती जे दृढ़ाम, भगवान कपिल देव कहते हैं। और तीसरा लक्षण है कि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अब मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए सारे जिम्मेवारी सारे संसार के दायित्व छोड़ देते हैं, अपने स्वजन बंधु को भी, अपनी माँ को, भाई को, पिता को भी छोड़कर मेरे लिए आ जाते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, ये उनका अंतरंग कारण है, मेरे लिए छोड़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहु ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, पिता तजे प्रहलाद विभीषण भाई, अनेक उदाहरण है। तो इस तरह से छोड़ देते हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते हैं और भगवान के लिए घूमते हैं, भगवान के गुणों को धारण करके घूमते हैं समाज में, भगवान के शील स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो यह है भगवत पार्षदों की विशेषता। तो इसको आगे कहते हैं इतना उनकी महिमा है, तो कहते हैं इतना उनके विषय में बताऊं, भूतानि विष्णु स्वरूपूजितानि। ये साधारण लोगों की, हम लोगों की क्या बात है, देवता लोग इनकी पूजा करते हैं। दुर्दर्श लिंगानि महाद्भूतानि, ऐसे भगवत पार्षदों का दर्शन असाधारण है, जनरल पब्लिक को नहीं होता। तुम लोगों का तो पता नहीं किस जन्म का सौभाग्य था कि भगवत पार्षदों का दर्शन किया। रक्षन्ति तद भक्ति मतः परेभ्यो, मेरे जम्फास को काटने का केवल अधिकार विष्णु को है और भगवत पार्षदों को। मत्स्य मर्त्यानथ सर्वतस्य, मेरे ऊपर भी अगर कोई शासक है तो वो है भगवत पार्षद। ये कहना पड़ेगा, तुम लोग आंख से देख कर आए हो ना। कहते अरे धर्मशास्त्र तो ऐसा कहता है, आपने इसके पहले तो ऐसा प्रवचन किया कि वेद जिसको निर्णय करे, वेद के अनुसार चले वो धर्म है, वेद के विरुद्ध अधर्म है। ये लोग भाषण भी दिए भगवत पार्षदों के यहाँ, जो सुने थे जमराज के क्लास में। तो कहते हाँ हाँ, लेकिन असली धर्म तो बताया नहीं, गलती तो मुझसे हो गई कि स्पेशल क्लास नहीं लिया। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये तो व्यवहारिक धर्म है। तो जो तुम लोग बात कर रहे हो, जो तुम लोग संसार के व्यवहार की बात, संसार चलाने के लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था यह है, वेद मैनेजमेंट भी बतलाता है और इसे ऊपर भी, वो है भगवान के द्वारा। नवई विदुर मुनयो ऋषयो नापि देवा, कोई बात नहीं तुम लोग नहीं समझे इसमें क्या आश्चर्य है। बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं इसको। न सिद्ध मुख्या, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी उसको नहीं जानते हैं। असुरा मनुष्य, असुर और मनुष्य। कुतो विद्याधर चारण आदय, विद्याधर चारण आदि नहीं तो कुतः तुम लोग जैसे लोग कैसे जानेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो जब कोई जानता ही नहीं तो वो धर्म किस काम का है? अरे ऐसा धर्म जिसको लोग जाने, पालन करें, माने तो उसकी बात है। आप कह रहे कोई जानता ही नहीं तो बिना मतलब की बात कर रहे हैं। जानते हैं, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वया सखी वयम, एक एक श्लोक का लिंक है। तब कहते हैं कि देखो सबसे बड़ा धर्म है ये, 12 लोग अथॉरिटी है। और एतावाने वे लोकेशमिन पुनसाम धर्म परस्मृत, सबसे बड़का धर्म इतना ही है कि भक्ति जोगो भगवती तद नाम गहरादि भी, भगवान के चरणों में भक्ति की जाए और उन भक्ति में सर्वश्रेष्ठ तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो तद नाम गहरादि भी। तो फिर आप आगे आप लोग सुनते रहेंगे, यह है जमराज का बड़ा सुंदर प्रवचन, द्वादश महाभागवतों में एक है, तो इसी अध्याय में उनका प्रवचन है। बारहों आचार्य का प्रवचन भागवत में जहां तहां है, इस अध्याय में यमराज का प्रवचन है। वयम कौन है, मैं भी उसमें हूं 12 जानकार लोगों में। तो उन लोगों की जिज्ञासा हुआ, आप भी हैं अब तक बताए नहीं, तब बता रहे हैं आगे बताएंगे। तो उनको बता दिए और कह दिए, तो वो लोग कहे कि तब तो हमारी छुट्टी, नाम लेने वाले तो बहुत लोग हैं। तब आगे कहेंगे नहीं नहीं है ना, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्यन स्मृति तच्चरणा रविंदम कृष्णाय नमति अक्षर एकदापि ताना अध्वम अस्तो अकृत विष्णु कृत्यान। कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो नाम नहीं लेते हैं ना प्रणाम करते हैं, उन लोगों को पकड़ो जो नाम लेते हैं मेरे रेंज से बाहर, वो भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह के प्रवचन करेंगे और एक एक श्लोक आप लोग कृपा करके ध्यान से पढ़िए समझिए, बहुत सुंदर प्रवचन है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरे कृष्ण, समय होगा, कोई जिज्ञासा है आए? क्या उसके पास सब गुण था लेकिन वो असत संग करता था ना, ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है ना। कौन? दुर्योधन का साथी था, वो असत संग नहीं करता था, जो बिल्कुल महाभारत में दुष्ट चतुष्टय का नाम है, चार दुष्ट हैं महाभारत के मेन कारण, उसमें है भागवत में भी वर्णन है, यही वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी तीसरे अध्याय में चारों का नाम रख रहे हैं, नहीं पहले श्लोक पहले अध्याय में ही, कि वो चार असत लोग दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण सौबलश्च, इन चारों की सम्मति से विदुर जी का अपमान किया। जब विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने उत्तर देने लगे कि ठीक नहीं है महाराज युधिष्ठिर को बुलाकर राज दीजिए, सब भागवत के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में, तो वहां चार दुष्टों का चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी, कि उसमें से सौबल माने शकुनी कर्ण दुर्योधन और दुशासन, ये चारों मिलकर निर्णय लिए कि विदुर को यहां से भगाया जाए। तो आप उसको कैसे साधु कह रहे हैं, चार चतुष्टय। अच्छा, फिर उसको महाभारत के लास्ट में, महाभारत के जब जो उसका रथ फंस गया तो चक्का निकाल रहा था, भगवान कहे कि मारो इसी समय अर्जुन को, मारो एक निहत्था है नीचे है, अरे फिर प्रवचन करना मार, मैं कह रहा हूं। तो भगवान की आज्ञा मानकर एक बाण मारा जो कर्ण पर लगा, तो कहता अरे अर्जुन तू अपना इतना बड़ा जस क्यों धूल में मिला रहा है, निहत्थे पर बाण चला रहे हो। अब महाभारत का श्लोकों को पढ़िए, तब अर्जुन फिर रुक गए, तब भगवान कहते हैं अरे मैं कह रहा हूं मारो मारो। तो जब भगवान कहे तो कर्ण का अच्छा आप कह रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ और आप सलाह दे रहे हैं मुझको मारना। तब भगवान बोलने लगे, रे धर्म ध्वजी, धर्म का ज्ञान तुमको है? उस समय अकेले निहत्था अभिमन्यु को जब सात सात महारथी मार रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था?
तुम्हारे जैसे धर्म की झंडा लेकर चलने वाले मूर्ख उस समय नहीं विचार किया कि निहत्था था अभिमन्यु? जिस समय भरी हुई सभा में सती साध्वी द्रौपदी को नग्न करने का प्लान चल रहा था, तुमसे भी प्रार्थना की थी ना, और तुमने कहा था कि जिसके पांच पांच पति हैं वो वेश्या हैं, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? और सोए हुए पांडवों को जलाने की जो प्लानिंग हुआ उसमें तुम नहीं था? तुमको पता नहीं था कि इनको जलाया जाएगा? उस समय तुम्हारा धर्म कहां था? धर्म की परिभाषा सुन ले कान खोलकर। मैं जो चाहता हूं वो धर्म है, मैं जो कहता हूं वो धर्म है, मेरे इच्छा के विरुद्ध जो कुछ भी है वो अधर्म है। मैं चाहता हूं तुमको मारा जाए। तो असत संगी था ना, वो सारा शील स्वभाव खत्म। होगा ना, होगा, लेकिन नाम उच्चारण तीन प्रकार के होता है, तीन। एक होता है नामाभास, एक नामापराध और एक शुद्ध नाम। तो नामाभास से नरक का पास कट जाएगा। अजामिल नारायण बोल दिया तो बैकुंठ थोड़े उसी समय चला गया, नरक से बच गया। और एक नामापराध है तो नामापराध जाम में फंस जाता है, ब्रेकर लग जाते हैं, रास्ते में है लेकिन देर से पहुंचेगा, कई जन्म लग सकता है नामापराधी को। नामापराधी भी नरक नहीं जाएगा। नामापराध, दस नामापराध सुनते हैं ना, ऐसे नामापराध के साथ जो नाम जप करता है वो नरक नहीं जाएगा लेकिन भगवत धाम जाने में कई जन्म लग सकता है। और जो शुद्ध नाम जप करेगा वो तुरंत चला जाएगा, जैसे हरिद्वार में जाकर गया। तो ये जो हरे कृष्ण बोल लेते हैं वो नामाभासी लोग हैं, हो सकता है उसमें नव अपराधी लोग हैं, तो नरक जाने से तो बच जाएंगे अवश्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसी समय भगवत धाम चले जाएंगे, इसके लिए शुद्ध नाम जपना पड़ेगा, भले कितना जन्म के बाद वो सुकृति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन उस पर चक्रवर्ती ठाकुर जी लंबर टीका लिखे हैं, उस घटना पर उन्होंने एक टीका लिखा है, थोड़ा बड़ा है। उसमें कहते हैं कि चित्रकेतु जैसे उन्नत भगवत भक्त के भगवान शिव में दोषारोपण ये सर्वथा आश्चर्य की बात है, नहीं होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वही। और उस पर वो कहते हैं कि वास्तव में गलती किसका था, चक्रवर्ती ठाकुर जी इस पर विचार किए हैं कि गलती किसका था, चित्रकेतु का, शिव जी का, पार्वती का, किसी का तो गलती होना चाहिए ना। तो गोद में पत्नी को बैठाकर पकड़कर आलिंगित पत्नी के साथ कथा कहना, ये शिव जी की गलती है? तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, उनको पता भी नहीं था कि मैं बैठाकर कथा कर रहा हूं। वो तो बैठी थी, तब तक कुछ लोग आकर जिज्ञासा करने लगे, उत्तर देने के आवेश में भूल गए, तो पार्वती को हट जाना चाहिए। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पार्वती क्यों हटे, इससे उत्तम आसन उसको कहां मिलेगा, अपना सौभाग्य अपने से क्यों छीने, वो बैठी थी आनंद में, अपने पति के गोद में बैठी है, थोड़े व्यभिचार है कि वो हटे। अच्छा, तो फिर चित्रकेतु क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए? तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चित्रकेतु को लग गया कि भाई ये आज की बात नहीं है, भगवान शिव की बात नहीं है, ये परंपरा की बात है, ये नकल न होने लगे, जज जत आचरते श्रेष्ठ, ये फैशन न चालू हो जाए, तो इसके लिए चित्रकेतु बोल दिए कि भाई अभी टोक देना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, बोल देता हूं। अगर चित्रकेतु जिस समय बोले उस सभा में भी नारद जी थे, भगवान शिव जहां कथा कर रहे थे उस कथा में भी नारद जी बैठे थे, नारद अंगिरा जैसे बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो जब चित्रकेतु एक शिष्य इतना असाधारण गलती चालू कर दिया तो गुरु का काम है चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो नारद जी कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मौन सपोर्ट किया कि ठीक किया बेटा, हम लोग तो नहीं बोले तू बोल। तो चित्रकेतु को नारद जी मना नहीं किए, इसका अर्थ यह है कि चित्रकेतु का बोलना उचित था, आखिर तो कोई बोलने वाला होना चाहिए ना। अच्छा तो बोल दिए, तो फिर पार्वती को तो संभलना चाहिए कि भाई ये गलती है। तो पार्वती क्यों बोली, तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति दशा में सिंधु में कहा गया है कि अपने गुरुजन का बड़े का अगर अपमान होता है तीन में एक काम करना चाहिए, बोलने वाला का जीव उखाड़ लेना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए, चाहे भाग जाना चाहिए। तो उनके पास सामर्थ्य था, वो जीव निकाल दी, श्राप दे दी, तो अपने पति के निंदा नहीं सुन पाई, उसका धर्म उनका धर्म था। तो फिर चित्रकेतु नीचे उतर करके कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, माता से क्षमा मांगते हैं, माते तुम मेरे बातों से दुखी हो गई, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे अवश्य इसका दंड भोगना चाहिए क्योंकि मैं भगवान शिव पर उंगली उठाया, फीलिंग भी कर रहे कि मैंने गलती किया और इसका परिणाम असुर जोनी मैं आसानी से भोग लूंगा, लेकिन आप अपनी दया बनाए रखिए, मैं किसी भी जोनी में जाऊं भगवत भक्तों का संग मिलना चाहिए। ये कहकर असुर जोनी में चले गए। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ गलती किसी की नहीं है, भगवान के एक विशेष इच्छा से वो घटना घट गई और लोगों को शिक्षा देने के लिए कि चाहे कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, वैष्णव महापुरुष पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, और अगर उठाता है तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ लिखते हैं। तो उसमें एक विचित्र घटना हो गई, देवर्षि आदि सपोर्ट किए नहीं बोलकर, ठीक है तो काफी विलंब हो गया। आंतरिक स्वभाव भगवान कपिल देव बतलाते हैं, मई अनन्य न भावे न भक्ति कुर्वंती जे दृढ़ अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मत्कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्ता स्वजन बांधवा श्रीणवंती कथयंती च, ये जो केवल सुनने और कहने में रमता है ये उसका अंतरंग लक्षण है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, उसके जीवन की शैली है भगवान के विषय में कहना सुनना बोलना, ये उसका अंतरंग लक्षण है। और मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, ये सब हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।